मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। आज 22 अक्टूबर 2020 है और आज के इस एफईआईएस के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि कल मैंने एक पेरेंट्स के नाते सभी अन्य पेरेंट्स से एक मार्मिक और व्यावहारिक अपील की थी। मुझे नहीं मालूम कि उस अपील को कितने पेरेंट्स ने सुना होगा या अप्रत्यक्ष माध्यम से मेरी यह अपील कितने पेरेंट्स तक पहुंच पाई होगी, लेकिन मैं इस विश्वास पर यह सब काम करता हूं कि हो सकता है अभी न सही, लेकिन धीरे धीरे कभी कभार कभी कोई असर हो जाए। तो दोस्तों, इसी तरह की आज एक अपील मैं युवाओं से करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी अपील शुरू करूं, एक बात बताना चाहूंगा जो खासकर मेरे लिए और हमारे एकेडमी के साथियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि कल जो मुझे मेल मिले हैं उन मेल्स में कई लोगों ने अपने इस व्यावहारिक अनुभव की चर्चा की है कि सर, हमने आपके बताए अनुसार कोशिश की और हमारी यह कोशिश बहुत सफल रही, और सबसे बड़ी बात यह कि वह भी इसी बात की उम्मीद कर रहा था, यानी कि वह भी बिल्कुल इस प्रतीक्षा में था या वे प्रतीक्षा में थे कि उधर से फोन आए और मैं लपक कर फोन उठाऊं और फिर जब हम मिलें तो लपक कर एक दूसरे के गले मिल जाएं। दोस्तों, यह जीवन है। सच पूछे तो जो मैंने ईगो की बात कही थी, जो फियर की बात कही थी, वे ही दो सबसे बड़े ऐसे रोड़े होते हैं जो हमारे संबंधों की पाइप में जो जल प्रवाह होना चाहिए उस जल प्रवाह को रोक देते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा हम सब लगभग किसी न किसी मामले में भुगत ही रहे होते हैं। कभी कभी मुझे ये लगता है दोस्तों कि अगर हम संबंधों को नष्ट करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम उसकी समीक्षा करना शुरू कर दें, तर्क वितर्क करना शुरू कर दें। सामने वाले से ही आपको तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में ही तर्क वितर्क करने लगे, किसी के बारे में करने लगे। आपको ध्यान होगा कि बहुत पहले मैंने एक बात कही थी कि हम क्यों किसी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। शायद उसका टाइटल था कि सब कुछ जानना कितना भयावह होता है, और जब हम तर्क वितर्क करते हैं तो हम यही तो करते हैं कि उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। और जब आप किसी के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे तो आपको क्या लगता है कि उसके बारे में सब कुछ अच्छा ही अच्छा जानने को मिलेगा? यह असंभव है। और फिर आपको कुछ गलत जानने को मिल जाएगा और वही हमारे संबंधों को खत्म करने के लिए पर्याप्त होता है, और ज्यादातर संबंध सच पूछिए तो इस आधार पर खत्म भी होते हुए देखे गए हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, कि मेरी जो आज की अपील है उसका संबंध तर्कों से नहीं है, क्योंकि इसे आप तर्क की कसौटी पर कसकर देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि निराशा आपके हाथ लगे। मैं तो एक इसे यूं कह लीजिए कि मार्मिक अपील कहना चाहूंगा। अगर आप इसे थोड़ा सा और अच्छा शब्द देना चाहें तो आप इसे एक व्यावहारिक अपील कह सकते हैं। अगर तर्क ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे, मर्म मिलेगा, और ये मर्म इस तरीके का है जो व्यावहारिक रूप में काम करता है। देखिए, जीवन में तर्क ही सब कुछ नहीं होता, हालांकि मैं लगातार तर्क का पक्षधर हूं, तर्क का समर्थन करता हूं, तर्क के आधार पर जीवन को आगे ले जाने की बात करता हूं, लेकिन हमेशा मैं उसमें ये ऐड कर देता हूं कि यही सब कुछ नहीं है। भावना भी जीवन का एक बहुत बड़ा पक्ष है, और भावना के भी अपने तर्क हैं, उसके भी अपने यथार्थ हैं। तो हमें ये कभी भूल नहीं करनी चाहिए कि नहीं, जो भावनाएं हैं वो तो थोथी होती हैं, बेकार होती हैं, वो रियलिस्टिक नहीं होती, वे झूठी होती हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की सोच को बनाना ही अपने आप में झूठ को पालना होगा। तो दोस्तों, इसी पृष्ठभूमि के बाद, भूमिका के बाद, अब मैं एक छोटी सी अपनी अपील पर आता हूं। दोनों के बीच में, यानी कि अभिभावक के बीच में, पेरेंट्स जो हैं और बच्चों के बीच में, जो उनके बच्चे हैं उनके बीच में जो एक जनरेशन गैप है, इसको लेकर के मैं बात कर चुका हूं, और वो बात हम लोगों ने काफी तर्क के आधार पर ही की थी। लेकिन क्या तर्क के आधार पर इसे सुलझाया जा सकता है? जैसे कि मैंने कहा कि यह संभव नहीं है, तो यहां हमें थोड़ी सी भावनाओं का सहारा लेना होगा, और वे भावनाओं का सहारा जो किसी भी संबंध के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। संबंध भावनाओं के आधार पर ही बनते हैं। फ्रेंड्स, आप कभी अपने पेरेंट्स के बारे में एकांत में सोच कर देखिए, अगर बेहतर होगा कि आप उन्हें लिखना शुरू कर दें। आप कभी इस बात को मत भूलिए, मैं दूसरे देशों की बात नहीं जानता, लेकिन जो भारत के पेरेंट्स हैं, अपवाद को छोड़ दीजिए, ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं एक समय के बाद वे अपने बच्चों का जीवन जीने लगते हैं। जैसे ही बच्चे उनके गोद में आते हैं, उसी दिन से वो बच्चों का जीवन जीने लगते हैं, बच्चों के साथ जीते हैं। बच्चे उनके लिए बोझ नहीं होते, क्योंकि जब बच्चे नहीं होते तो उन्हें अपना जीवन सूना सा लगता है, अधूरा सा लगता है। याद रखिए कि बच्चे उनके लिए अलग से कोई बोझ नहीं है, वो उनके जीवन का हिस्सा है। उससे वो अपने जीवन को भरा पूरा महसूस करते हैं, और उस भरा पूरा को और ज्यादा भरा पूरा बना सकें इसके लिए वे बच्चों का जीवन जीना शुरू कर देते हैं। कि ये बच्चे बड़े होंगे, इनकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, इनकी शादी की व्यवस्था करनी है, अच्छे से अच्छा इनको एजुकेशन देना है, इनके जीवन के संघर्षों को कम करना है। हमने जितनी तकलीफें उठाई हैं, आपके पेरेंट्स ने बहुत तकलीफें उठाई हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स के बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जिस युग के पेरेंट्स हैं उस युग में उस तरह की न तो सुविधाएं थी जैसी आज हैं, और न उस तरह के अवसर थे कमाई के जैसे कि आज हैं। संघर्ष किया है, और वो संघर्ष कुछ समय के बाद आपके लिए किया गया है, क्योंकि वो आपको अपना सब कुछ देना चाहते हैं, वो सब कुछ देना चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिला है। उनके देने के तरीके अलग हो सकते हैं, उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनकी सोच अलग हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन इनफैक्ट सच बात यह है कि ज्यादातर उनके जीवन का हिस्सा आपके लिए रहा है। अब उसमें वो कितना कर पाए वो एक अलग बात है, उनको लेकर के आपके मन में शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने आपके लिए जीने में, आपके लिए करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखी है। उन्होंने अपनी इच्छाओं की कटौती की है, अपनी भावनाओं की कटौती की है, अपने सपनों के जो गाढ़े चटक रंग होते हैं उनको धूसर बनाया है, सिर्फ इसलिए कि आपके सपनों के चटकदार रंग साकार हो सके, वो रूप ले सके। इसका मतलब है कि वो लगातार जब आपको बढ़ता हुआ देखते हैं, कुछ करता हुआ देखते हैं, तो उसमें वो अपने को देखते हैं, इनफैक्ट अपने भविष्य को देखते हैं, अपने स्वार्थ को नहीं। स्वार्थ तो एक जुड़ा हुआ हिस्सा है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो अपने आप को आपका एक्सटेंशन मानते हैं या आपको अपना एक्सटेंशन मानते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो ये मानकर चलते हैं। और ये मानना क्या गलत है कि जब आप बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, कुछ करने के लायक होंगे, तो आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब वो करने लायक नहीं रह गए हैं, उनकी शारीरिक अशक्तता उन्हें सीमाओं में बांध रही है। तो ऐसे में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, करना ही चाहिए। और अगर वो आपसे अपेक्षा कर रहे हैं तो कोई गलत अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये करना ही चाहिए, लगातार ये होता ही आया है। और अगर आप इस हिस्से को परिवार से निकाल दें, काट कर अलग कर दें, तो फिर मुझे लगता है कि परिवार की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। यूरोप इस संकट से गुजर रहा है, भयावह रूप से गुजर रहा है। दोस्तों, ये मेरा और मेरी पत्नी का सौभाग्य रहा है कि यूरोप के कई देशों में हमें जाने का मौका मिला है, और उसमें कनाडा और अमेरिका में तो हम काफी लंबे समय तक रहे भी, तो हमें वहां के चीजों को देखने और समझने का मौका मिला। हम भारतीय परिवारों को भी हमने देखा, हमने कनाडा कैनेडियंस और जो ऑस्ट्रेलियंस परिवार हैं उनको भी देखा और समझा। वहां की परिवार की जो परिभाषा है वो दरक चुकी है, चटक चुकी है, वो केवल एक औपचारिकता के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसका संकट उनके मानसिक अवसाद में दिखाई देता है, उनके जीवन के सूनेपन में दिखाई देता है। क्या सच में हम भी ऐसा ही जीवन चाहते हैं, या क्या सच में हम भारत को भी ऐसा बना करके ही एक बहुत ही, आप यूं कह लीजिए कि विकसित राष्ट्र का नाम देना चाहते हैं? यह हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और दोस्तों, उसके प्रमाण चूंकि हमारे सामने यूरोपीय देश मौजूद हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अब प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, हमें अपने को ठीक करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के यह फ्रेंड्स, कि अगर आपके पेरेंट्स के मन में कुछ ईगो भी है, वो आपसे कुछ अपेक्षाएं भी कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में एक तथ्य ले आइए कि वो डिजर्व करते हैं। और इस बात को आप तब समझ सकेंगे जब आप खुद पेरेंट्स बन जाएंगे, थोड़ी सी उम्र हो जाएगी, हो सकता है कि जब आप समझें तब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ न हों, हमेशा हमेशा के लिए कहीं चले गए हों, कहीं चले गए का मतलब कभी मुलाकात ही न हो, ब्रह्मांड इतना बड़ा है। तो अपने अंदर थोड़े से इमोशंस के तत्व को लाइए कि ये समय का बहुत छोटा सा टुकड़ा है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आप सबसे इस अपील के बाद इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।